الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تبارك وتعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رواه الترمذي في كتاب الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیوں پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کی گئی ہے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فقہائے صحابہ میں سے تھے یہ صحابی جو تھے عبداللہ ابن ابی اوفا یہ فقیہ تھے بہت پڑھے وہ حدیث نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ سے کوئی ضرورت پیش آ جائے یعنی کوئی بھی کام مشکل سامنے آ جائے کوئی کسی آدمی سے کوئی کام پیش آ جائے بہت سارے کام آج انسان کے ہیں بہت سارے کام ہیں تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے اچھی طرح سنت کے مطابق ادب کے ساتھ وضو کرے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے اونچی جگہ بیٹھنا اور اچھی طرح وضو کرنا سنت کے مطابق اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اور دو رکعت کے بعد یہ دعا پڑھے جو دعا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیا یہ دعا تو آن لائن بھی ہے اس کو دعائے حاجت کہتے ہیں اس کو دعائے حاجت کہتے ہیں اس کا نماز جو ہے نماز کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں اور نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے حاجت کہتے ہیں بہت زبردست دعا ہے کئی بار ہم نے آزمایا ہے کوئی بھی پریشانی آئے نا دو رکعت نماز اچھی طرح پہلے وضو کرو مسواک کے ساتھ اور اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد آپ دو رکعت نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد یہ دعائے حاجت پڑھو درود شریف اللہ کی تعریف کے بعد اللہ کی تعریف کرو درود شریف پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگے یہ جب کبھی بھی پریشانی آئے یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے مسلم اور نان مسلم کے درمیان ڈفرینسز کہ مسلم جو ہے جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ ہے اور ایک نان مسلم ہے وہ اپنے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے نہیں ہوتا پریشان ہوتا ہے یہ ہے جیسے مسلمان ہے ایک شخص بے روزگار ہے اس کے پاس جاب نہیں کوشش تو کر رہا ہے کہ مجھے کوئی اچھا کام مل جائے اچھی جاب مل جائے اب ملازمت اور نوکری اور جاب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے تلاش کرے ہے نا آن لائن اپلائی ہو یہاں جائے وہاں جائے تلاش کرے جہاں کہیں उसको नौकरी मिलने का इम्कान है, दरखास्त रखे, अपने सीवी दे, जो भी है। और अगर कोई जानने वाला हो तो उसको कहे भाई तुम कहां काम कर रहे हैं, अगर कोई जॉब हो तो मुझे बताना। ये सब जाहिरी असबाब है, इसको हम क्या कहते हैं, जाहिरी असबाब है कि जितना हो सका हमने कर लिया। और एक नॉन मुस्लिम सारा भरोसा सिर्फ इस असबाब ही पर करता है, असबाब ही पर करता है, सुबह से शाम तक लैपटॉप पर बैठकर काम तलाश करता रहता है, समझ में आई बात। तो उसका तर उसको कोशिश ये होती है कि मैं अच्छी तरह सीवी बना लूं और किसी से सिफारिश करा दूं और फला जगह जाऊं, फला जगह जाऊं, फला जगह जाऊं। ये सब काम गैर मुस्लिम का, मुसलमान का काम तो यह है। असबाब तो वो भी इख्तियार करे, सबब तो इख्तियार करना है, हमें भी जॉब तलाश करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट भी देनी पड़ती है, सीवी भी देनी पड़ती है, सिफारिश की भी जरूरत है, जायज तरीके से जो भी जरूरत के काम है। लेकिन हमारी निगाह इस्लाम की वजह से, मुसलमान की वजह से जाहिरी असबाब पर नहीं, फिर अल्लाह के सामने आ जाए, वुजू करें, दो रकात नमाज पढ़कर, ए अल्लाह मैंने दे तो दिया है, अब आगे चलाना तेरा काम है। ये फर्क है मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान में। उनका तो पूरा भरोसा असबाब पर है, हमारा भरोसा असबाब करने के बाद अल्लाह पर है। इसीलिए कसरत से क्या पढ़ना चाहिए, वकफा बिल्लाही वलिया वकफा बिल्लाही नसीरा, वकफा बिल्लाही वलिया वकफा बिल्लाही नसीरा। मैंने एक को कहा था कि तुम ये नमाज पढ़ो और ये दुआ जो हमने बयान की है दुआ हाज उसको पढ़ो, और उसके बाद चलते फिरते ये वजीफा करो, लड़की की शादी हो जाएगी। 4 हफ्ते उसने मुसलसल कसरत से, ऐसे पूछते कितनी बार पढ़ू, 10 बार 15 बार से कुछ नहीं होता, इतना पढ़े कि अल्लाह ताला उस पर क्या तरस खा जाए, पढ़ते रहे वकफा, नियत दिमाग में नियत भी हो अल्लाह तू ही मेरा गार्डियन है, तू ही मेरा हेल्पर है, अल्लाह मुझे हेल्प कर दे मेरे इस काम में, नहीं बात। और नमाज भी एक बार नहीं पढ़नी है, नमाज भी जब तक तुम्हारा काम ना, पढ़ते रहो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात में पढ़ो, तहज्जुद में पढ़ो, नहीं बात, दिन में जितनी बार पढ़ सकते हैं। लेकिन भरोसा किस पर होना चाहिए हमारा, अल्लाह पर, अल्लाह। एक आदमी बीमार हो गया, जाहिर असबाब है, डॉक्टर पर के पास जाते हैं, भाई फुला जगह दर्द है, वो जो भी दवा दे हम दवा को इस्तेमाल करते हैं, वो जो भी रीजन बताए हम जानते हैं, जो तदबीर बताए किस तरह लेना है कैसे करना है, सब जाहिर असबाब है। लेकिन एक गैर मुस्लिम है जिसका अल्लाह पर ईमान नहीं है, वो सारा भरोसा उसका ट्रस्ट अपॉन मेडिकेशन है और तदबीर के ऊपर है, डॉक्टर पर है। अलबत्ता एक मोमिन बंदा एक ऐसा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन फरमाई, तुम दुआ भी करो तदबीर भी करो, लेकिन तुम्हारा भरोसा उन दुआ और तदबीर पर ना होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा भरोसा किस पर होना चाहिए, अल्लाह के सामने। अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ये इंसान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदबीर है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जब कभी असबाब जरूरी इख्तियार करो, लेकिन हर वक्त भरोसा किस पर होना चाहिए। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है ना, बहुत जबरदस्त है। मेरी माए और बहनें, आप दूसरों को भी दावत दें, इसलिए कि तालीम हासिल करने का एक ही तरीका है, हम तो बूढ़े हो गए, अब एक ही तरीका है कि अपने उस्ताद के या अपने शेख के या कोई आलिम के बयान में जाएं, जिसको हम कहते हैं दर्स हदीस में जाएं, और जाकर के कुछ सीख कर आए। हफ्ते में एक ही बार है, ज्यादा नहीं है, हफ्ते में एक ही बार आना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर बूथ के दीन औरतों में बयान फरमाते थे। ये रिक्वेस्ट थी औरतों की, ये क्या है, इसको बोझ नहीं समझना चाहिए। एक एक कदम पर अल्लाह ताला माफ कर देता है, घर से आते हुए हर कंकर, हर पत्थर, हर दरख्त, हर पत्ता मगफिरत की दुआ करता है, क्योंकि खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी इलम हासिल करने के लिए जाता है वो मदरसे में मस्जिद कुबा में नहीं जाता, वो तो अल्लाह जन्नत के रास्ते पर चल रहा है। कहां चल रहा है? जन अबू को कुबैसा की रिवायत मैंने पहले ही बयान की थी, घर से आए दोपहर में इल्म हासिल करने के अल्लाह के नबी कुछ हदीस सुना दीजिए, कुछ हदीस हमारे सामने पढ़ दीजिए। फरमाया पहले तू फजीलत सुन ले, घर से लेकर यहां तक तुम आए हो, हर कक्कर हर कंकर हर पत्थर हर दरख्त जहां से तू गुजरा है हर एक ने तेरे लिए मगफिरत की दुआएं की है। इसलिए इसको कभी भी जाया न करो। क्या मालूम हमें आइंदा टाइम मिला न मिला अल्लाह के सामने। इसीलिए आदमी जब इलम हासिल करने के लिए जाता है और उस पर अमल करता है तो उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लग जाती है और कयामत के दिन उसको तालिब इलम में शुमार किया जाता है। तालिब इलम इतना थोड़ा है कि चलो भाई जामिया खातून नबी में दाखिल होंगे, इसी को खाली तालिब इलम। पहले जमाने में कहां डाउलूम थे बताओ? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 1080 उस्ताद के पास गए हैं, मदरसे में तो एक नहीं गए, यहां गए वहां कई कई जगह में गए हैं इलम हासिल करने के लिए। हमें तो सिर्फ करीब में आना है इलम हासिल करने के लिए। इमाम मुस्लिम के कितने उस्ताद हैं? मालूम होता है इलम हासिल करने के लिए कहीं भी चले जाओ, चाहे दो चार हदीस सीख लो। सहाबा किराम पूरा दिन आते थे कि कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस हमें सीखने की मिल जाए। हमारी तरफ मदरसा थोड़ा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त मिलता अल्लाह के नबी साहबा को कुछ बातें बयान फरमा देते, ये नसीहत ये मदरसा था उनका। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ एक अजीब है, बहुत अच्छे जुमले हैं उसके। ये दुआ इमाम तिर्मिजी ने किताब उद्दावात में नकल किया है, वो जिस तरह साल हमने किताब उद्दावात पढ़ाया था तिर्मिजी का, हमने तालिबे इल्म को कहा था ये दुआ पल्ले बांध लो, रात दिन ये दुआ मांगो। वो कौन सी दुआ है? कोई भी काम तुम कर लो, करने के बाद यूं कहो अल्लाहुम्मा हाजल जुहदा वालेका तुकलाम, अल्लाह जितने मेरे बस में था मैंने कर लिया, आगे भरोसा तुझ पर है। कितनी अच्छी दुआ है, अल्लाहुम्मा हाजल जुहदा, अल्लाह मेरे बस में जो था, इंसान के बस में कितना होता है वो मैंने कर लिया, मैं दवा ले आया है अल्लाह तबारक व तआला, मैं दवा ले आया ए अल्लाह, मैंने जॉब तलाश करने की कोशिश कर ली ए अल्लाह, मैंने फुला काम करने की कोशिश कर ली, आगे भरोसा वाले का तुकलान, तुझ पर भरोसा है। अजीब जुमला है। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरा, फरमाया दीन दर हकीकत सोच को बदलने का नाम है। क्या फरमाते? दीन इन रियलिटी टू चेंज योर व्यू, नई बात, जरा सी निगाह बदल लो, जरा सा नीयत बदल लो तो दीन बन जाएगा। अगर ये नीयत नहीं बदली तो वही दुनिया है। मिसाल के तौर पर हर मजहब वाले ये कहते हैं कि भाई जब बीमारी आए तो कहां जाओ? मैं डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, हॉस्पिटल जाओ। इस्लाम की तालीम भी यही है कि बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाओ, इस्लाम की तालीम है। लेकिन जरा सा फर्क बदल लो, वो ये कि इलाज जरूर करो लेकिन भरोसा उस इलाज पर नहीं बल्कि किस पर करो? बस अपनी नीयत को बदलना है। अल्लाह मैं जाता हूं डॉक्टर के पास, लेकिन शिफा देने वाली जात कौन है? अल्लाह तू ही है। सिर्फ थोड़ा सा बदल दे, ए अल्लाह मैं जॉब पर जाता हूं लेकिन नीयत क्या करनी है? ए अल्लाह मेरे बच्चे घर पर है, बीवी घर पर है, अब उनके उनके कमा उनको खाने पीने घर के सब चीजों के लिए जरूरियात की मुझे पैसे की जरूरत है कि अल्लाह मैं उसी ले जाता हूं हलाल कमाई के लिए, तो आपको पूरा दिन इबादत का सवाब मिल जाएगा। सिर्फ जाविया बदलना है, नीयत बदलनी है। औरतें घर में सफाई करती है, वो क्यों करती है? मेहमान आने वाले, नीयत यही होती है ना, कोई अभी आ जाएगा, किसी ने फोन किया भाई हम 10 बजे आएंगे तो बेचारे 8 बजे से उठ जाएगी, घर साफ करना शुरू कर देगी, वरना वह बात करेंगे कि उसका घर तो बहुत घसीये वाला है। घसिया समझते हैं ना, कभी कोई चीज इधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी, गुजराती घसिया बोलते इधर पड़ी है, इधर पड़ी है, तो साफ सफाई को होवर भी करेगी, नीयत यही होगी मेहमान आ रहे
हैं।
लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, नीयत बदल दे कि अल्लाह को पाकीजगी बहुत पसंद है और पाकीजा रहने वाले को अल्लाह मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन। थोड़ी सी नीयत बदलनी है। अब यही सफाई तुम्हारे लिए दुनिया में एक दिन बन जाएगी, ये साफ करने का सवाब मिल जाएगा। समझ में आई बात। औरतें खाना बनाती है घर पर, चलो भाई आज इंशाल्लाह मैं एक कप ज्यादा डाल दूंगी कि अगर कोई मेहमान आ गया तो खा लेगा, नहीं आया तो बच्चे ही खा लेंगे। नीयत थोड़ी बदल दी या पड़ोसी को दे दूंगा। अगर इस तरह की नीयत कर ली है तो उसका खाना पकाना भी मेहमान को खिलाने का, पड़ोसी को देने का जी, बच्चों को खिलाने का सदके का सवाब मिल जाएगा। थोड़ी नीयत बदलनी होती है। इसीलिए पहले जमाने में हमने देखा जो हकीम लोग होते थे, पढ़े लिखे भी होते थे, बहुत पढ़े लिखे होते थे, बहुत नेक होते थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर एक आदमी का लखनऊ से फोन आया और कहा मुझे घर में जब भी जाता हूं बीवी पर बहुत गुस्सा आता है, जब भी जाता हूं ऐसा लगता है मैं उसको काट खा जाऊं, तो नहीं बात उसको काट के खा जाऊं, ऐसा गुस्सा आता है मैं क्या करूं। तो हजरत थानवी ने फरमाया आपके पास आ जाऊं, तो हजरत ने फरमाया मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे बैत हो, फुला मेरे एक खलीफा है, क्या कहा लखनऊ में, वहां मेरे एक खलीफा हकीम है, हकीम की दुकान है उनकी, उनके पास बहुत कस्टमर आते हैं हिकमत के लिए, उनकी दुकान पर जाकर के आपको एक कोने में बैठकर उनको देखना है। क्या फरमाया, ऐसा नहीं कहा जाकर उनकी खिदमत करना है, ऐसा नहीं कहा कि उनको हाथ बिठाना है, ऐसा नहीं कहा कि उनके चप्पल सीधे करना है, क्या कहा वहां उसकी दुकान पर जाकर बेहतर उनको कहना है। खान मतलब मुझे यूं कहा है कि आपकी दुकान में बैठकर मुझे बैठने का मुझे हुक्म दिया और आपको देखता रहा। आप नहीं यकीन जानिए एक हफ्ता वो कह रहे मैं गया, एक हफ्ते में मेरा गुस्सा ही खत्म हो गया। अब उस खलीफे का जिसके अंदर में सबर का बहुत मात्रा था, टॉलरेंस का, उसका असर इस देखने वाले पर पड़ा है। अंदाजा कीजिए कि उस आदमी का गुस्सा ही क्या हुआ, खत्म हो गया। सो पहले जमाने में हकीम लोग पढ़े लिखे होते थे, नेक होते थे, तो वो क्या करते थे, मुसलमान अतिबा जब कोई मरीज के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे, प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे दवा का नाम वगैरह, लबूबे कबीर लबूबे सगीर जो भी हो वो लिखते थे, तो सबसे पहले ऊपर लिखते थे हुवा शाफी। क्या लिखते थे, हुवा शाफी, वही शिफा देने वाला है, पहले ऊपर ये लिखते थे। ये इस्लाम का एक तरीका कार था जो पहले जमाने में लोग करते थे, उन्हें पता है कि मेरे हाथ में कोई शिफा नहीं है। वो शाफी एक बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का नाम है अल्लाह शाफी अल्लाह। सो ये बात लिखकर कहते थे, ये ऐलान करना चाहते हैं मेरे हाथ में शिफा नहीं है। ओ मौल साहब तुमने वो पढ़ने का वजीफा बताया मेरा काम हो गया। मैंने कहा मेरी वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से हुआ है, यकीन अल्लाह पर रख के करना चाहिए। सो एक तबीब भी, एक डॉक्टर भी इस बात का उस जमाने में इकरार करता था कि करने वाली जात अल्लाह की है, तो पेशेंट को तो और ज्यादा अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। दवा ले लो लेकिन भरोसा किस पर हो, ये तो हमारे रात दिन के मसाइल है जो आज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। रमजान की इफ्तारी आएगी, नियत कर लो कि मैं इफ्तारी का बनाता हूं सिर्फ शोहर के लिए नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि मेरा इफ्तारी का खाना कोई रोजेदार खाएंगे तो उनके रोजे का मुझे सवाब मिलेगा। एक आदमी ने मुझे परसों मसला पूछा, क्या मैं रोजेदारों के लिए जकात दे सकता हूं। मैंने कहा पागल है क्या तू, वो सारे रोजेदार जकात के मुस्तहिक है, सदके के मुस्तहिक है। सदका तो उसको दिया जाता है जो गरीब वगैरह हो भाई, लिल्ला रकम दे इसलिए कि तुझे सारे रोजेदारों का क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। मैं 10 आदमी को इफ्तार कराऊं, 10 आदमी को इफ्तार कराऊं तो मुझे 10 आदमी के रोजे का सवाब मुफ्त में मिल गया,
अरे भाई मेरे रोजे का कबूलियत का तो कोई शक है, यकीन तो नहीं है, लेकिन कोई अल्लाह वाले को हम इफ्तार कराएंगे, कोई नेक लोगों को, रोजेदार को, नमाजी को इफ्तार कराएंगे। हो सकता है अल्लाह उसने सुबह से लेकर, सुबह सादिक से लेकर शाम तक में कितना कुरान पढ़ा होगा, कितना अल्लाह अल्लाह किया होगा रोजे के साथ, नमाज पढ़ी होगी, तिलावत की होगी, वो सारा का सारा सवाब तुम खींच लोगे। इसलिए नहीं देखा आपने कभी रमजान में उमरे में चले जाओ मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, हाथ पकड़ पकड़ कर बिठाते हैं, भाई मेरे दस्तरखान पर आ जाओ, मेरे दस्तरखान पर आ जाओ। एक एक के दस्तरखान पर सौ सौ आदमी होते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, ये खजूर तो आज है कल नहीं है, लेकिन मेरे दस्तरखान पर ये इफ्तार करेंगे तो इन सब का सवाब रोजे का मुझे मिल जाएगा। नीयत बदलनी है, इफ्तार तो करनी करानी, खाली पांच भजिए अपने शोहर के लिए बना दिए, खत्म हो गया। नहीं, नीयत बदल दो कि मैं अपने शोहर को भी इफ्तार कराऊंगा, कराऊंगी, अपने बच्चों को भी इफ्तार कराऊंगी, और अगर एक्स्ट्रा हो गया तो मस्जिद में इकबाल भाई के लिए भेज दूंगी। अरे बात सुनना नहीं है, यानी रोजेदार के लिए नीयत ही बदलनी है तो क्या होगा, सबके रोजे का सवाब मिल जाएगा, अंदाजा करो। इसलिए हमेशा अल्लाह पर क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। मुसब्बिबुल असबाब पर, असबाब पर नहीं, किस पर नजर होनी चाहिए, मुसब्बिबुल
असबाब,
असबाब को बनाने वाला, असबाब को बनाने वाला अल्लाह है, उस पर नजर होनी चाहिए। हजरत खालिद बिन वलीद का वाक्य मशहूर है, मेरी माए और बहने तुमने सुना न सुना हो, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह एक मरतबा सीरिया में एक किले का मुहासरा कर लिया, बहुत बड़े मुजाहिद थे, तो साहबा के साथ गए, किला जो होता है लोग उस जमाने में फौत किला के अंदर में घुस जाते थे, दरवाजा बंद कर देते ताकि कोई और पहाड़ को कौन तोड़ सकता है, लेकिन हजरत खालिद ने उस किले का मुहासरा कर चारों तरफ अपनी फौज को खड़ी कर दी, कोई निकल के भागे नहीं, वो चाहते थे कि सुलह हो जाए। अब उन्होंने भेजा अंदर में से एक आदमी को ट्रीटी और सुलह कराने के लिए कि जब थोड़ा मसला हल हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो, खालिद बिन वलीद को कहो कि हमारे साथ क्या कर ले, सुलह कर ले, सुलह कर ले, राजीनामा कर ले, क्या कर ले, सुलह कर ले। तो उनका सरदार उस उन नॉन मुस्लिम का सरदार है वो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला के पास आया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला देखा कि उसके हाथ में छोटी सी बोतल है, इतने बोतल है, छोटी सी बोतल ऐसे, भाई क्यों आए हो, कहा आपके साथ सुलह करने के लिए मुझे भेजा गया है, हाथ में क्या है, उसने जवाब दिया ये एक बोतल है, उसमें ऐसा जहर पॉइजन है कि दुनिया में कहीं ऐसा पॉइजन नहीं मिलेगा, सिर्फ इसको सूंघे तो आदमी मर जाता है, मुंह पर रखे तो अलग बात, सूंघे तो मर जाता है। ये सोच कर आया हूं कि अगर आपसे सुलह की बातचीत में मैं कामयाब हो गया तो ठीक है, अगर आपने सुलह नहीं की तो नाकामी का मुंह लेकर मैं अंदर में नहीं जाऊंगा अपनी कौम के पास, ये पी करके क्या करूंगा,
मर जाऊंगा,
मर जाऊंगा। यानी उस जमाने में लोग खुददार होते, यार क्या मेरे क्या मुंह दिखाऊंगा। तो लेकिन सहाबे किराम जो यहां पर गए थे क्यों गए थे, मारने के लिए नहीं, दीन की दावत देने के लिए, क्यों गए थे, दीन की दावत, दीन की दावत का काम तो हर जगह हो सकता है, मैं अपनी पड़ोसी को भी कह सकती हूं भाई रोजा रखो, भाई नमाज पढ़ो, अपने घर में भी कह सकता, अपने मोहल्ले में जाकर भी मैं कह सकती हूं, मेरी माए और बहने दावत और तबलीग बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, दो आदमी बैठ गए उनको दीन की बात समझा दो। इसीलिए हजरत खालिद बिन वलीद ने सोचा कि उसको इस वक्त दीन की दावत देने का अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है कि इसको क्या है, मैं दीन की दावत देता हूं, आया है सुलह के लिए। तो उन्होंने उस सरदार से पूछा क्या तुम्हें इस जहर पर इतना भरोसा है कि जैसे ही तुम पियोगे फौरन मर जाओगे, हजरत खालिद ने पूछा उसे, सरदार ने जवाब दिया हां मुझे इस पर भरोसा है, किस पर भरोसा है, जहर पर भरोसा है, इसलिए कि ऐसा सख्त है कि डॉक्टरों का कहना ऐसा है कि आज तक कोई शख्स इस किस्म के जहर को मुंह पर भी नहीं लगा सका। ये जैसे ही जबान पर लगाता है उसकी मौत हो जाती है। पीने की तो बात की बात है, उसको नसीहत करने की वसीयत करने का भी चांस नहीं मिलता, फौरन आंख बंद हो जाती है, इतना खतरनाक। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस सरदार से कहा, लाओ ये बोतल मुझे दे दो, जहर की जो बोतल है ना मुझे दे दो। और फरमाया, तुम्हें इतना यकीन है कि तुम भरोसा है कि इसी पर मर जाओगे, ये अपने हाथ मुझे दे दो। फिर फरमाया, इस कायनात की किसी चीज में कोई इफेक्ट, कोई तासीर न मारने की न जिलाने की, किसी भी चीज में, जब तक अल्लाह उसके अंदर में असर न डाले। दुनिया की कोई दवा नहीं तुम्हें शिफा दे, दुनिया की कोई चीज नहीं तुम्हें हलाक कर दे, जब तक तुम अल्लाह उसके अंदर में इफेक्ट और असर न डालेगा। मूसा अलैहिस्सलाम का मसला, उनको पेट की तकलीफ थी, तो अल्लाह ने फरमाया फुला जंगल में जाओ, फुला रूट खा लो, खा दिया ठीक हो गए, बहुत तकलीफ थी। कुछ महीने के बाद फिर दर्द हुआ, तो फिर गए, चलो यार अब तुम्हें जाकर मुझे पता है क्या खाना है, तुम दिन ऐसे ही करते ना, वो एक दवा खा ली थी फिर यही खा ले, ऐसे तुम करते हैं, वो दवा दे रहे जो आपने मुझे पहले दी थी, नहीं बात। तो फिर वो जंगल में चले गए और वही तोड़ कर खाना तो और भर गया। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जाओ मूसा को, पहली मर्तबा मैंने उसमें असर रखा था, दूसरी मर्तबा नहीं। तो हर चीज में असर रखने वाली जात कौन है? इसीलिए मुसलमान का यकीन है ना कि अल्लाह पर भरोसा करके कर काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने अल्लाह का नाम लिया, बोतल को खोला और कौन सी दुआ पढ़ी, हम तो कभी पढ़ते भी नहीं, रियादुस सालिहीन की सही हदीस है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही या मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा वा हुवस समीउल, तीन बार पढ़ लिया। अगर कोई आदमी इस दुआ को सुबह तीन बार पढ़ ले, शाम तक उसको कोई उंगली नहीं लगाएगा, ये सही हदीस है। और शाम को पढ़ ले, ये हदीस नकल करने के बाद रियादुस सालिहीन में लिखा है कि वो नकल करने वाले को स्ट्रोक हुआ, तो तालिब इलम ने कहा, आप हमें ये हदीस पढ़ाते कोई नुकसान नहीं होता है, तो आपको स्ट्रोक क्यों हुआ? उन्होंने कहा, जिस दिन मैं ये दुआ पढ़ना भूल गया तब मुझे ये हुआ। उन्होंने खुद कहा, बहुत अच्छी दुआ, इसको याद कर लो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, सुबह अपने बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल जाओ ना, ये दुआ पढ़ा के भेजो। यहाँ तो चलो ठीक है, पाकिस्तान में इंडिया में बच्चों को उठा के ले जाते हैं, साउथ अफ्रीका में स्कूल से बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, कितने बच्चे हैं जो बच गए, गाड़ी ऐसी आती चलता है, स्कूल जा रहा छोटा बच्चा, दरवाजा खोला अंदर बिठा दिया, ले गए।
अभी ये बहुत
कई लोगों के बच्चों को स्कूल से ले गए काले लोग, क्यों ले गए? ताकि उनके बाप से मिलियन रेंट निकाल दे। हर जगह ऐसा ही है, लेकिन जिन जिन बच्चों ने सुबह में ये दुआ पढ़ी उनको कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में एक जगह में शूटिंग हुआ स्कूल में, कितने बच्चे शहीद हो गए, लेकिन जिन बच्चों को माँ बाप ने दुआ पढ़ी उनको कुछ नहीं हुआ। ये दुआ है, अपने बच्चों को सुबह स्कूल जाने से पहले दुआ पढ़ा दो, खुद भी पढ़ लो, शोहर को भी पढ़ा दो, काम पर जा रहे हैं वो बहुत सारे फिर कहते जलजला है, पता भी नहीं चलता आप लोगों के सुबह कैसे होगी। कौन सी दुआ है भाई? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, पढ़ो मेरे साथ सब, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु ला यदुर्रु ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन 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 फिल अर्दी वला फिस्समा वला फिस्समा वला फिस्समा वहुवस्समीउल अलीम। तर्जुमा भी इसका बहुत अच्छा है, अल्लाह तबारक व ताला के नाम के साथ जिसका नाम लेकर दुनिया की कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना आसमान में ना जमीन में, ना आसमान में, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला सुनने और जानने वाला है। अब ये दुआ पढ़ी, बोतल को खोला और हजरत खालिद बिन वलीद ने उस आदमी के सरदार के सामने पूरी पॉइजन की बोतल पी गई। अभी कुछ अरसे पहले एक अरब ने भी ऐसा किया, कितने लोग मुसलमान हो, उनको यही था कि इससे मर जाएंगे, यही दुआ पड़ी। आप देखना कि मुझे मौत आती है या नहीं। अगर खालिद ने उन्हें कहा, उनका तो यकीन था, साहब किराम का यकीन तो बाहर से ज्यादा मजबूत था, बाहर तो कुछ भी नहीं है, उनका यकीन इतना मजबूत था कि पूरी बोतल जो वो सरदार लेकर आया था, वापस नहीं जाऊंगा, पी के मर जाऊंगा, जिसको जबान तक नहीं लगा सकते थे। हजरत खालिद ने उठाई बिस्मिल्लाह पर करके और पिया। उस सरदार ने कहा, यह कोई इधर उधर की बात नहीं, सच्चा वाकया है शाम की लड़ाई का। तो ये आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आप क्यों पी रहे हैं? ये जहर तो इतना सख्त है, अगर इंसान थोड़ा सा भी मुंह में डाल दे खत्म हो जाएगा। आपने तो पूरी शीशी पी ली, पूरी शीशी पीने का इरादा किया, उसने भी पीने से पहले ही कहा, मर जाओगे तुम, सुलह कर लो हमारे साथ। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। क्या फरमाया? मुझे चुनांचे दुआ पढ़कर वो पूरी शीशी जहर की पीले पी गए। अल्लाह को अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाना था, अल्लाह को क्या है, अपनी कुदरत दिखानी थी कि दुनिया की किसी चीज में ताकत नहीं है जब तक अल्लाह न चाहे। उस सरदार ने अपनी आंखों से देखा और हजरत खालिद बिन वलीद ने उसके सामने पी लिया, लेकिन उन पर मौत का कोई आसार नहीं हुआ। वो सरदार फौरन वही मुसलमान हो गया। सुना तो बात की बात है। तो हजरत साहब किराम के दिलों में यकीरा जमा हुआ था कि जो कुछ इस कायनात में हो रहा है वो सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, ये हमारा यकीन होना चाहिए अल्लाह की, और उनकी मशीयत और मर्जी के बगैर कोई चीज हरकत नहीं। ये तो कुरान में है कि एक पत्ता भी नहीं गिरता अल्लाह की मर्जी के बगैर, और एक पत्ता भी दरख्त पर नहीं लगता अल्लाह की मर्जी के बगैर। अल्लाह को पता है सब कुछ, रात का दिन का, काली चूटी काले पहाड़ में, काली रात में पहाड़ के अंदर में चलती है, उसकी चलने की आवाज और उसकी चलने की लकीर का पता भी अल्लाह को है। यह हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असबाब पर जितना भरोसा करोगे इतना ही तुम्हें असबाब बांध देगा। नहीं यार, मेरी दुकान से ही मेरा काम चल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कुछ नहीं होगा यार, मेरा क्या होगा। असबाब करने के बाद अल्लाह पर भरोसा करे, जैसे मैंने वाक्य सुनाया जी। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग थे ना, बचपन से माँ ने यूं कहा था, बेटे खाना मांगता था बच्चा, कहा दो रकात नमाज पढ़ और अल्लाह से खाना मांग। दो रकात नमाज पढ़ी उसने और फिर क्या है, अब अम्मी मैंने पढ़ ली है, और अम्मी ने चुपचाप से क्या है, खाना पिंजरे में रख दिया खबर में, कहा जाकर देखो शायद अल्लाह ने वहां रखा होगा। जाकर देखता खाना मिल जाता था। करती रही अम्मी, करती रही, रोजाना वो नमाज पढ़ता रहा, खाना मिलता रहा, पढ़ता रहा। एक दिन अम्मी क्या हुई, कहीं फंक्शन में चली गई और देर हो गई और बच्चा घर पर आ गया, उसको याद नहीं रहा खाना रखने का, चली गई। ये बिल्कुल सच वाकिया उस बुजुर्ग का, किताबों में लिखा है कि उन्होंने फिर दो रकात नमाज पढ़ी बच्चे ने, और बच्चे ने दो रकात पढ़कर पिंजरा खोला, अल्लाह खाना दे दे भूखा हूं, खोला तो वहां खाना था। अब माँ उधर परेशान है कि रोजाना अब मेरी मेहनत जाया हो जाएगी, अगर आज खाना नहीं होगा तो क्या मैं क्या करूंगी। वो जल्दी जल्दी आई घर पर तो बच्चा तो सोया हुआ है, पूछा खाना खाया, कहा बहुत अच्छा खाना, आज का खाना तो रोजाना खाना से अच्छा था खाना, क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए खाने का इंतजाम कर दिया था। अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है और अल्लाह के नबी की दुआ है, अल्लाह जितना मेरे बस में था मैंने कर लिया, आगे भरोसा किस पर होना चाहिए अल्लाह को। मैं चला गया सर्जरी में, दवा ले आया, अल्लाह लेकिन इस दवा में शिफा रखने वाली जात तेरी है, दो रकात पढ़कर अल्लाह से मांगे। मैं उस दिन मेरे सर में बहुत दर्द था, बहुत ज्यादा, मैं सर नीचे नहीं रख सकता था, उठा तहज्जुद में, उसके बाद मैंने अल्लाह नबी ने हाथ रखकर यह दुआ पढ़ी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखकर दर्द की दुआ, बिस्मिल्लाह औदु बिइज्जतिल्लाह وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله أعوذ بالله من قدرته. بسم الله بسم الله وبالله أعوذ بعزة الله بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. پھر دماغ میں میں نے کہا اللہ نبی کا ہاتھ تو میرے پاس ہے نہیں, نبی کا ہاتھ تو نہیں ہے, نبی نے اپنا ہاتھ رکھا تھا تو اس ہاتھ کی تو الگ برکت ہوگی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی بھی برکت ہوگی. نبی کا ہاتھ تو نہیں ہے لیکن نبی کے الفاظ میری زبان پر ہے جو انہوں نے بیان کیا تھا, میں کیا کہوں, اللہ فوراً در ختم ہو الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہاں لینے جائیں گے اللہ کے نبی کہا, میں کہاں لینے جائیں گے ابو بکر کہا, حضرت عثمان اور حضرت عمر کہا, لیکن الفاظ تو ان کے ہیں ہمارے پاس اور یہ قیامت تک باقی رہیں گے. اللہ انہیں کے الفاظ میں برکت دے دے اور شفا دے دے. بات سننے والی ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لائے, راستے میں ایک جگہ پر قیام فرمایا اور وہاں درخت کے نیچے سو گئے. یہ بھی مشہور واقعہ ترمذی شریف کا ہے. سو گئے اور آپ کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی گارڈ رہتا تھا, صحابی رہتے تھے حفاظت کے لیے, لیکن کوئی نہیں, سب کے سب سو گئے کیونکہ سفر سے آئے تھکے ہوئے تھے. اور اب کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنی کیا ہے لٹکا دی درخت کے اوپر, لیٹ گئے. اور کافر ایک نان مسلم آ گیا, دیکھا تو تلوار کو لے کر کے ایسا کھڑا ہو گیا سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کے پاس. آپ کی آنکھ کھل گئی, آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تو کیا ہے تلوار ہے, اب تو مجھے کیا کرے گا, اور آپ اکیلے ہیں اور یہ تو کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا, ایسا کر کے تلوار اٹھائی. اس شخص کا خیال تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں گے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, میں اکیلا ہوں, تو یہ میرے سر میں مار دے گا تو گھبرا جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پریشان ہو جائیں گے. لیکن آپ کے چہرے مبارک پر اسمائل ہے, دور دور تک کی کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ نے اطمینان سے کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا. کیا کہا؟ بس یوں کہا اللہ بچائے گا اللہ بچائے گا. جب اللہ کا نام لیا فوراً اس کے ہاتھ سے اس اللہ کے رعب کی وجہ سے نام کے رعب تلوار گر گئی, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لی, فرمایا اب تمہیں کون تجھے کون بچائے گا, اب تجھے کون, دعوت دینی تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, قتل نہیں کرنا تھا اس کو, حالانکہ وہ آیا تھا قتل کرنے کے لیے, میرے جیسا مار دیتا تو چل تو بھی لے کر جا, کچھ نہیں کیا, فرمایا تجھے کون بچائے گا, تو میں اس تلوار پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تلوار بنانے پیدا کرنے والے کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں میں. سو اس تلوار میں بھی تاثیر لینے والا کون ہے؟ اگر تلوار میں تاثیر خود ہوتی تو وہ چھڑی اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ دیتی, لیکن نہیں کاٹا, چھڑی میں کچھ نہیں جب تک اللہ اس میں اثر نہ رکھے. یہ اس وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمایا تھا. تو پھر اس نے کہا میں تو مسلمان ہو جاؤں, کہا نہیں, کہا جاؤ چلے جاؤ, معاف کر دیا, گیا واپس سب کو لے کر آ کے مسلمان ہو گیا. یہ چیز ہے. اس لیے حدیث تو لمبی ہے, میں آگے بہت تفصیل میں نہیں جاتا ہوں, اطمینان سے کیا کر لے, جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو بات وہاں سے چلیے نا, کیا کرے اچھی طرح وضو کرے, وضو سے سارے گناہ دھل جاتے, یاد رکھو وضو کرتے ہی سارے گناہ دھل جاتے, لیکن وضو کے طریقے ہوتے ہیں, وضو کے اچھی طرح بیٹھ کر کم پانی کھولے زیادہ نہیں, یہ بھی اللہ کے یہاں سوال ہوگا, پہلے ہی مرحلے میں سوال ہو جائے گا کہ پانی تو نے ویسٹ کیا. وضو جتنا ہو سکے اپنے پیسوں سے کرو, ٹھیک ہے کبھی مجبوری ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بناؤ اور مسجد کے سامنے ایک وضو خانہ ہی بتاؤ, کوئی آدمی کہیں سے آ جائے تو وضو کر سکے, کہاں جائے گا, کسی کے مکان میں تھوڑا جائے گا. اگر کوئی باطلی سے آ گیا تو وضو کرنے کے لیے آ گیا, یعقوب کا دروازہ کھول وضو کرنا, ابراہیم کا دروازہ کھول وضو کرنا, ایسا تھوڑا کہے گا. تو بھائی ہمیں اپنے گھر سے وضو کر لیں سب سے اچھی بات, اپنے پانی سے اپنے پیسے سے, और चलकर आए तो फिर तुम नमाज में हो। घर से निकलते ही मस्जिद आने तक तुम किस में हो? नमाज में। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, और नमाज में हो तुम, नमाज में, नमाज में हो। वल्लाही अभी नमाज में नहीं हुआ, लेकिन रास्ते में आते आते नमाज में। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सवाब है। अल्लाह अकबर। फरमाया वजू करके वजू कर लो, अच्छी तरह वजू करो बैठ कर, या अच्छी तरह अदब के साथ सुन्नत के साथ मिसवाक करो। वजू करने के बाद फिर क्या करें? वजू के दौरान की जो दुआएं हैं वो जरूर पढ़ें। अल्लाहुम्मग़फिरली ज़म्बी फवस्सिली फी दारी वबारिकली फी रिज़्की, है ना। बहुत से लोगों को घर नहीं मिलता था, मैं यही कहता हूँ वजू के दरमियान जो दुआएं पढ़, घर मिल जाएगा। ये दुआ बहुत मुबारक है। दो वजीफे ऐसे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाए, उसमें क्या होता है, आदमी की कोई परेशानी हो, घर नहीं, पैसे नहीं, तो ये दुआ मांगता रहे, कोई असबाब अल्लाह बना देगा। एक तो वजू करे सुन्नत के मुताबिक, और उसमें ये दुआ जरूर पढ़े जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, तिर्मिज़ी शरीफ की किताब उद्दावात में है। अल्लाहुम्मग़फिरली ज़म्बी वस्सिली फी दारी वबारिकली फी रिज़्की। नंबर दो, वजू कलमे शहादत भी पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसमें दुआ भी हदीस में, अल्लाहुम्म जअलनी मिन अत्तवाबीन व जअलनी मिन अल-मुत्तहिरीन, ये वजू के बाद पढ़ ले। दूसरा एक वजीफा है, खाने के लिए हाथ धो। जब कभी खाने का इरादा हो तो अपना हाथ धो। हाथ धोते हुए नियत करो, अल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले हाथ धोए हैं, मैं उस सुन्नत को अदा करता हूं, मेरे कर्ज अदा करने का कोई बंदोबस्त फरमा दे। ये बात बहुत सारे हमारे उलमाए किराम ने लिखी है, और देवबंद ने फरमाया जिन जिन को बताया अल्लाह पाक ने खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोते हुए नियत करते हुए सुन्नत के मुताबिक जिन्होंने किया इस अमल को, अल्लाह ने उनके कर्ज की अदा करने की सूरतें पैदा कर दी। समझ में आई बात? कई लोग वाकयात है, अभी वक्त नहीं है, उसके बाद क्या करें। सलातुल हजत का कोई खास वक्त नहीं है, खाली मकरू टाइम नहीं होना चाहिए, फजर के बाद नहीं, असर के बाद नहीं, और तीन मकरू टाइम है, सनराइज, जवाल, और क्या है, सनसेट को। इसके अलावा और कोई भी रात में, ईशा के बाद, मगरिब बाद, जी जोहर के बाद, सनराइज के बाद, जब कभी तहज्जुद में पढ़ना चाहे, सिंपल है, ऐ अल्लाह सलातुल हाजत मेरा फुना काम है, अल्लाह दो रकात नमाज पढ़ता हूं, दो रकात नमाज पढ़ के ये दुआ अपने फोन में याद न हो तो क्या कर लेनी चाहिए, उसको डाउनलोड कर लेनी चाहिए। हर जगह पर है दुआए हाजत, इसको कहते हैं दुआए हाजत। समझ में आ रही बात? तो नमाज पढ़ने के बाद तीसरा चौथा कलमा पढ़ लो, अल्लाह की तारीफ कर लो, इसको हम लोग सना कहते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अकबर, सुभान हो गए, अल्लाह की तारीफ हो गई। दुरूद शरीफ पढ़ लो तीन बार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद अब ये दुआ पढ़ लो एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। आप मुझे सुनते होंगे मैं अक्सर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभान अल्लाह रब्बिल अर्शिल अजीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनी अस्अलुका मुजीबा, अपने लिए मांगे तो सबके लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मुजीबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फिरतिक वल गनीमत मिन कुल बिर व सलामत मिन कुल इस ला तदअ ली ज़म्बन इल्ला ग़फरता व ला हम्मन इल्ला फ़रजता व ला मरीज़न इल्ला शफ़ईता व ला हाज़ा इल्ला क़ज़ा इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। बस इसको पढ़ने के बाद आप अल्लाह से हार उठाइए, बस अल्लाह से हार उठाकर दुआ कर लो, ये दुआ पढ़ लो, या फिर जो भी याद हो। समझ में आ रही बात? और मैंने कहा चलते फिरते उठते बैठते कौन सा वजीफा है, वकफा बिल्लाही वलिया वकफा बिल्लाही नसीरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में सुना देता हूं, वक्त नहीं है, अबू दाऊद शरीफ की है, कि कोई काम में तुम्हें शक हो, मैं करूं कि न करूं, करूं कि न करूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नमाज के लिए जाते थे, यानी सलातुल हाजत के लिए, और दुआ करते थे। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़बहु अमर सल्ला, भाई अल्लाह ये मुश्किल पेश आ गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं कि ना करूं, अल्लाह तू आसान फरमा दे। तो एक मुसलमान का काम यह है कि दो रकात नमाज पढ़कर अपनी मुश्किल के लिए दुआ करेगा, तो अल्लाह उसको क्या कर देगा, आसान कर देगा। इसलिए आपके सामने मैंने आज का जो सबक सुनाया है वो बहुत अच्छा सबक है। काम की बातें हैं लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। दुनिया पर ही भरोसा अल्लाह पर नहीं है तो उससे कुछ काम करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। या अरहमुर राहिमीन, या ज़िल जलाली वल इकराम, या हय्यू या क़य्यूम। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को रमज़ान के ऊपर बयान करेंगे कि रमज़ान में क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन क्या करना चाहिए, उस पर बयान करेंगे इंशाअल्लाह। तो सारी माएँ और बहनों को दावत दें, आकर सुने कि रमज़ान में किस तरह रमज़ान गुजारनी है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम सब का आना कबूल फरमा, सबका बैठना कबूल फरमा, सुनना कबूल फरमा। कि अल्लाह हमारी इस दर्स हदीस को तो मकबूल बना दे, मकबूल बना दे। ऐ अल्लाह तो मकबूल बना दे। ऐ अल्लाह इसी दर्स हदीस के हमारे लिए निजात का जरिया बना दे, नजात का जरिया बना दे, मगफिरत का जरिया बना दे। बड़े गुनहगार हैं, हमारे पास कोई ऐसा अमल नहीं है, बस ये दो चार बातें तो जबान से कहलवाता है। ये दो चार बातें हमारे भाई और माँ और बहनें आकर सुनती है। हमारा आना बैठना सुनना कबूल फरमा, हमारा आना बैठना सुनना कबूल फरमा। जो जो लोग मदरसे में आते हैं अपने काम काज को आगे पीछे छोड़कर, अल्लाह मैं खास दर्स हदीस में उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके हर परेशानियों को दूर फरमा, इनकी मुश्किलों को आसान फरमा। या अल्लाह ये तेरे नबी की मोहब्बत में अपने कामकाज को छोड़ कर आई है, तेरे नबी की मोहब्बत में आई हुई है, यकीनन आई है, कोई शक नहीं है। अल्लाह इनके एक एक कदम को नजात का जरिया बना, रहमत का जरिया बना, मगफिरत का जरिया बना, परेशानियों के दूर होने का जरिया बना, बीमारियों के दूर होने का जरिया बना। हमारा बैठना सुनना कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे, कब्र भी बना दे, आखिरत भी बना दे, बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा, अर्श के साए में जगह नसीब कर देना, मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी दे देना। ऐ अल्लाह तू अपने हाथों से हमें शराबन तहूरा पिलाना, अल्लाह तू अपने हाथों से हमें शराबन तहूरा पिलाना। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमें इखलास नसीब फरमा, हमें इखलास नसीब फरमा। अल्लाह शाबान की बरकतें हमें नसीब फरमा, शाबान की बरकतें हमें नसीब फरमा, शाबान की रहमतें हमें नसीब फरमा। अल्लाह जो जो लोग परेशान हाल है अपने घरों में, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबके घरों में सुकून नसीब फरमा, आफियत नसीब फरमा, सबकी जिंदगियों में सुकून नसीब फरमा। या हमें सदका देने वालों में से बना, ज़कात देने वालों में से बना, तौबा करने वालों में से बना, हज और उमरा करने वालों में से बना। ऐ अल्लाह लोगों को माफ करने वालों में से बना, नमाज पढ़ने वालों में से बना, ज़ाकिरीन में से बना, शाकिरीन में से बना, सालिहीन में से बना, अब्रार लोगों में से बना। अल्लाह हमारी इस मस्जिद को आबाद फरमा, हमारी इस मस्जिद को आबाद फरमा, हमारी इस मस्जिद को आबाद फरमा। और जो आबाद करते हैं माएं और बहने और मर्द जितने लोग आते हैं, अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमा, उनके औलादों को आबाद फरमा। या अल्लाह या रहमान, आने वाला मुबारक महीना हमें नसीब फरमा, आने वाला मुबारक महीना हमें नसीब फरमा। उसमें अल्लाह जो रहमत और मगफिरत और जहन्नम से छुटकारा तूने बयान फरमाया वो हमें नसीब कर देना। अल्लाह अपने फजल करम से, अपने रहम करम से हमारी दुआ को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही व